मुख्य समाचारों में विक्टोरिया में 11 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले, राष्ट्रमंडल द्वारा वित्त पोषित संगरोध सुविधाओं के लिए बढ़ता समर्थन, और भारत में COVID-19 के मामलों में लगातार गिरावट। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार अनीता बरार के साथ। विक्टोरिया में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि COVID-19 के सभी 11 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले मौजूदा प्रकोप से जुड़े हैं। प्रकोप में अब 81 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 3 लोग अस्पताल में हैं। नए मामलों में से 4 वेस्ट मेलबर्न के प्रकोप से जुड़े हैं, जबकि मैडस्टन में आर केयर एज्ड केयर होम में एक क्लस्टर एक अतिरिक्त मामले के साथ बढ़कर 9 हो गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सेटन का कहना है कि प्रतिबंधों में ढील देना हल्के में लिया गया निर्णय नहीं होगा।
I don't want us to be in a situation where we open up to a point where it's out of control. These 11 new cases today is what's happened after a week and a half of a very stringent lockdown. I can't tell you what an alternative universe would look like if we hadn't locked down, but I don't think you don't have to have an overactive imagination to imagine that if you had the opportunity for any number of people to come to your household every day over the last 10 days, that it might look very different.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मेलबर्न में प्रतिबंध जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा।
This is a challenge in Victoria, but it's one that will be overcome. And it will be one that I hopefully see Victoria opened again soon. And particularly for those parents who having to keep their kids at home away from school. Kids have lost enough time out of school over the course of the last 18 months. And it's very important we get those kids back to school as soon as possible. So I am hopeful that these restrictions in Victoria will be lifted as soon as possible.
Pharmacists का कहना है कि अगर अधिक फार्मेसियों को भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का वैक्सीन रोल आउट जल्द ही पूरा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के फार्मेसी गिल्ड का कहना है कि इसकी भागीदारी के बिना ऑस्ट्रेलिया रोल आउट में 400 से अधिक दिन जुड़ जाएंगे। उनका कहना है कि ये प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, आपूर्ति या उपभोक्ता विश्वास का मुद्दा नहीं है, बल्कि नौकरशाही, लाल फीताशाही है। लगभग 50 फार्मेसियों ने रूरल क्वींसलैंड में COVID-19 टीकों का प्रशासन शुरू कर दिया है। एक राष्ट्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यों को ये तय करने की अनुमति है कि उन्हें शामिल करना है या नहीं। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरीजिक्लियन का कहना है कि राज्य अपने होटल संगरोध कार्यक्रम के साथ पूरी क्षमता में है। हर हफ्ते 3,000 ऑस्ट्रेलियन नागरिकों को घर वापस लाया जा रहा है। वर्तमान में न्यू साउथ वेल्स होटल संगरोध में 5,000 ऑस्ट्रेलियंस हैं। सुश्री बेरीजिक्लियन का कहना है कि राज्य वर्तमान संगरोध प्रणाली में एक बड़ी संख्या का सामना कर रहा था, लेकिन ये भविष्य में बदल सकता है।
We certainly wouldn't be putting in a request to operate any additional facility because we don't have the capacity. We're at capacity now. We're doing our bit. But however, as the PM said, down the track, quarantine could look different once the majority of our population's vaccinated and our international borders are open. Well, then that's a different question. But at this point in time, we don't have capacity to operate anything more than what we're doing.
नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया में वो पहला अधिकार क्षेत्र बनने के लिए तैयार है जो 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निवासियों को COVID-19 वैक्सीन प्रदान करेगा। पिछले हफ्ते की राष्ट्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद एक समझौते पर पहुंचने के बाद मंगलवार से यानी कल से डार्विन निवासी जो इस आयु वर्ग में हैं अब टीका प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और ब्रिस्बेन की 2032 ओलंपिक बोली के लिए टोक्यो की संभावित यात्रा से पहले क्वींसलैंड प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे ने COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। यमन में अधिकारियों का कहना है कि ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों द्वारा मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 17 लोग मारे गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से मध्य शहर मारिब में एक गैस स्टेशन पर हमला हुआ जिससे कारों में आग लग गई। अधिकारियों का कहना है कि सभी लोग आम नागरिक थे। मारिब में यमनी सरकार के मानवाधिकार कार्यालय के निदेशक अब्द रबो जुदई का कहना है कि ये मौतें एक युद्ध अपराध है।
We are calling on the international community, the international envoy, to stop crimes committed by Houthi militias, and we hope this crime is the last crime by the militias in the Marib region.
यमन 2014 से गृह युद्ध में उलझा हुआ है, जब हौथियों ने उत्तर के अधिकांश हिस्से को पार करके राजधानी सना को अपने अधिकार में ले लिया था, और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को निर्वासन में जाना पड़ा। इस युद्ध से 130,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और इससे दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट का जन्म हुआ है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में दो रेलगाड़ियों के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में कम से कम 30 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हो गए हैं। डॉन न्यूज़ ने घौतिकी के उपायुक्त उस्मान अब्दुल्ला के हवाले से कहा कि हादसे में पलटी बोगियों के भीतर फंसे लोगों को निकालने में भी अधिकारियों को मुश्किलें आ रही हैं। डॉन न्यूज़ की खबर में बताया गया कि कराची से सरगोधा जा रही मिलात एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिससे लाहौर से कराची आ रही सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। इस घटना में मिलात एक्सप्रेस की बोगियां पलट गईं। यह हादसा अपर सिंध के घौतकी जिले के धार के शहर के नज़दीक हुआ। और भारत में आज सोमवार को संक्रमण के नए मामले 1,636 दर्ज किए गए हैं। 61 दिनों बाद इतने कम दैनिक मामले दर्ज किए गए और इससे कम मामले 6 अप्रैल को 96,982 दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 2,427 की मृत्यु हुई है। दैनिक मामलों की रफ्तार अभी भी 1,00,000 से अधिक है, लेकिन राहत इस बात की है कि संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या ताज़ा मामलों से अधिक है। और भारत पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी के कथित अपहरण के दावे की जांच एंटीगुआ और बारबुडा पुलिस ने शुरू कर दी है। एंटीगुआ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने स्थानीय मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी कि चौकसी के वकीलों ने पुलिस आयुक्त को कथित अपहरण में शामिल लोगों के नाम एक शिकायत में दिए हैं। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर दावे सही हैं तो ये एक गंभीर मामला है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 77 सेंट और भारत के 56 रुपए 27 पैसे के बराबर है। और खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया के रिची पोटे ने टूर डी फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण दौड़ में जीत हासिल की है। एनिलोस ग्रेनेडियर्स पर सवारी करते हुए पोर्ट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एलेक्सी लुसेंको से 17 सेकंड पहले वो दूरी तय की। पोटे की टीम के साथी और 2018 टूर डी फ्रांस चैंपियन गैरेथ थॉमस ने देर से दुर्घटना पर काबू पाने के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। 1985 में फिल एंडरसन के बाद इस दौड़ को जीतने वाले रिची पोटे इतिहास के दूसरे ऑस्ट्रेलियन हैं। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में बौछारें बढ़ेंगी, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री। सिडनी में देर तक बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।